ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरकार हर तरह से तैयार है। गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा संसदीय समिति को जानकारी। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड द्वारा आगामी श्रावण एक गति से लागू होने के हिसाब से देश भर की 384 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रथम सेवा बिंदु के रूप में निर्धारित। 212वीं भानु जयंती के अवसर पर किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहे रेत और धूल के तूफान गंभीर स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय के खतरे का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक 2082 और औद्योगिक संपत्ति संबंधी विधेयक 2082 पेश किए गए। बैठक में संचार मंत्री की ओर से उप प्रधान एवं अर्थ मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने साइबर सुरक्षा संबंधी विधेयक को पेश किया था। वहीं औद्योगिक संपत्ति संबंधी विधेयक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने प्रस्तुत किया था। बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने कुछ नेपाल आइनों को संशोधित करने के लिए बने विधेयक पर राष्ट्रीय सभा से आए संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने विभिन्न समसामयिक मुद्दे उठाए थे, जिनमें प्रधानमंत्री सहभागी हुए स्पेन सम्मेलन के नाम पर गए नेपालियों का अब तक न लौटना और मंत्रियों के घूस की डीलिंग संबंधी लीक हुए ऑडियो संबंधी मुद्दे शामिल है। सांसदों ने इन मुद्दों के संबंध में सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए प्रधानमंत्री के जवाब मांगे। इसके अलावा सांसदों ने सिंचाई के लिए बारिश पर आश्रित मधेश में बारिश न होने से धान की रोपाई न हो सकने का मुद्दा उठाते हुए तराई मधेश को सूखाग्रस्त घोषित कर यहां के किसानों को राहत मुहैया कराने की सरकार से मांग की। साथ ही कई अन्य समसामयिक विषय पर सांसदों ने सदन और सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय सभा की सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति की बैठक में आज गृहमंत्री रमेश लेखक ने बताया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरकार हर स्तर पर पूरी तरह तैयार है। मंत्री लेखक ने कहा कि आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए सूचना प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाने पर सरकार काम कर रही है। मंत्री लेखक ने बताया कि यदि कोई जोखिम उत्पन्न होता है तो उसके प्रतिकार, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सरकार पूरे देश में तैयार है। उन्होंने आसार 24 को रसुआ की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में लापता हुए लोगों की खोज अभियान जारी होने की भी जानकारी दी। बैठक में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख इंजीनियर दिनेश प्रसाद भट्ट ने रसुआ की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से हुई क्षति और चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। प्राधिकरण प्रमुख ने बताया कि बाढ़ में अब तक 11 लोगों के शव मिले हैं और 17 लोग अभी भी लापता है। इंजीनियर भट्ट ने बताया कि घटनास्थल पर खोज और बचाव कार्य के लिए 1950 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें से 749 लोगों को जमीनी बचाव अभियान से और 200 लोगों को हवाई बचाव अभियान से सुरक्षित निकाला गया है। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि अगर पार्टी एकता को मजबूत करके संकल्प के साथ जुटा जाए तो एमाले को कोई भी हरा नहीं सकता। आज झापा में एमाले जिला स्तरीय कार्यकर्ता सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ओली ने बाहरी षड्यंत्रों को चीरते हुए सही नीति और नेतृत्व के पक्ष में काम करने का नेता कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने झापा की दमक नगरपालिका स्थित मदन डांगी बारी डीपू सड़क स्तरोन्नति परियोजना का आज उद्घाटन भी किया। बता दें कि विश्व बैंक के सहयोग में संचालित होने वाली नगरपालिका की गौरव वाली परियोजना की ये सड़क देश भर से चुनी गई 17 सड़कों में से एक है। नेपाली भाषा के आदि कवि और राष्ट्रीय प्रतिभा भानुभक्त आचार्य की 212वीं जयंती आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। विक्रम संवत 1800 71 में आषाढ़ 29 को तन्हू जिले के चुंदी रमघा में जन्मे भानुभक्त आचार्य को नेपाली साहित्य का पितामह माना जाता है। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान और भानु साहित्य उत्थान द्वारा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि भानुभक्त आचार्य न केवल नेपाली भाषा बल्कि सभी मातृभाषाओं से प्रेम करने वाले साझा कवि थे। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि आदिकवि आचार्य ने नेपाली भाषा साहित्य और संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने देशभर की 384 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रथम सेवा बिंदु के रूप में निर्धारित किया है। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने आगामी श्रावण 1 गति से लागू होने के हिसाब से देशभर की 384 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रथम सेवा बिंदु के रूप में निर्धारित किया है। ये जानकारी बोर्ड के जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्ल ने दी। बोर्ड द्वारा प्रथम सेवा बिंदु के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्था से बीमित व्यक्ति अब स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत बीमितों को पहले की तरह केवल अपने पंजीकृत स्वास्थ्य केंद्र से ही सेवा लेने की बाध्यता नहीं होगी। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने सभी स्थानीय तहों को प्रथम सेवा बिंदु के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भेजने का अनुरोध किया है। इससे पहले बीमित व्यक्तियों को प्रथम सेवा बिंदु के रूप में पंजीकृत अपने चुने हुए स्वास्थ्य केंद्र से ही सेवा लेनी होती थी। उसके बाद ही वे अतिरिक्त उपचार के लिए किसी अन्य अस्पताल या स्वास्थ्य संस्था जा सकते थे। नई व्यवस्था में ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि अब कैंसर उपचार में प्रयुक्त होने वाली अत्यावश्यक दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि नेपाल में उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को विदेश जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था डायरेक्ट रिलीफ ने 37 प्रकार की कैंसर दवाओं के सहयोग का वादा किया है, जिसके तहत पहली खेप की दवाएं नेपाल पहुंच चुकी हैं। मंत्री पौडेल ने बताया कि स्तन कैंसर, त्वचा कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर में प्रयुक्त होने वाली ये महंगी दवाएं अब 5 वर्षों तक नेपाल की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहेगी। दवाओं और चिकित्सा सामग्री का वितरण आज से ही 4 प्रमुख कैंसर अस्पतालों को किया गया है, जिनमें बीपी कोरेला मेमोरियल कैंसर अस्पताल भरतपुर, भक्तपुर कैंसर अस्पताल भक्तपुर, सुशील कोरेला प्रखर कैंसर अस्पताल बांके, बीर अस्पताल काठमांडू शामिल है। काठमांडू महानगर पालिका ने आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए 25,73,43,00,000 रुपए का बजट पेश किया है। काठमांडू महानगर पालिका के उपप्रमुख सुनीता डंगोल ने आज नगर सभा के 17वें अधिवेशन में आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए 25,76,43,00,000 रुपए का बजट प्रस्तुत किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते रेत और धूल के तूफानों ने गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर दी है। ये तूफान मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहे हैं, पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समस्या का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण को बताया गया है, जिससे श्वास संबंधी बीमारियों में वृद्धि, वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट, कृषि उत्पाद उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर बढ़ते पर्यावरणीय संकट की ओर एक चेतावनी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरकार हर तरह से तैयार है। गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा संसदीय समिति को जानकारी। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड द्वारा आगामी श्रावण 1 गति से लागू होने के हिसाब से देश भर की 384 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रथम सेवा बिंदु के रूप में निर्धारित। 212वीं भानु जयंती के अवसर पर किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहे रेत और धूल के तूफान गंभीर स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय के खतरा का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।